ملوک کی پہلی کتاب، بیسواں باب، احیاب کی فتح مندی۔
اور آرام کے بادشاہ بن حدد نے اپنا سارا لشکر جمع کیا، اور اس کے ساتھ 32 بادشاہ اور گھوڑے اور گاڑیاں تھیں، اور اس نے جا کر سامرا کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑائی کی، اور اس نے اسرائیل کے بادشاہ احیاب کے پاس شہر میں قاصد بھیجے اور اس سے کہا کہ بن حدد یوں کہتا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہی ہے، اور تیری بیویاں اور تیرے خوبصورت بیٹے بھی میرے ہی ہیں۔ تو اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا اور کہا، اے میرے آقا بادشاہ، جیسا تو نے کہا ہے، میں اور سب کچھ جو میرا ہے تیرا ہی ہے۔ پھر قاصد واپس آئے اور کہا کہ بن حدد نے جس نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے یوں کہا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا اور تیری بیویاں اور تیرے بیٹے میرے ہیں، تو انہیں میرے حوالے کر، اور میں کل اسی گھڑی اپنے نوکروں کو تیرے پاس بھیجوں گا تاکہ وہ تیرے گھر کی اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی کر لیں، اور ہر ایک چیز جو تیری آنکھوں میں مرغوب ہے اسے وہ اپنے ہاتھ میں لیں گے اور لے جائیں گے۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے تمام بزرگوں کو بلایا اور ان سے کہا، تم جان لو اور دیکھو کہ یہ آدمی فساد کرنا چاہتا ہے، کہ اس نے میری بیویوں اور میرے بیٹوں اور میری چاندی اور میرے سونے کے لیے میرے پاس آدمی بھیجے، تو میں نے اس سے انکار نہ کیا۔ تب سب بزرگوں اور تمام لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان۔ تو اس نے بن حدد کے قاصدوں سے کہا کہ تم میرے مالک بادشاہ سے بولو کہ جو کچھ تو نے اپنے بندے سے پہلے بھیج کر مانگا میں کروں گا، لیکن اس امر کی مجھ میں طاقت نہیں۔ تب قاصد روانہ ہوئے اور جواب پہنچایا، تو وہ پھر آئے کہ بن حدد کہتا ہے، معبود مجھ سے ایسا ہی کریں اور اس سے زیادہ کریں، اگر سامرا کی مٹی ان لوگوں کی مٹھیوں کے لیے جو میرے پیچھے آئیں گے کافی ہو۔ تو اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دے کر کہا، تم اس سے کہو کہ جو کمر بند باندھتا ہے وہ اس کی طرح شیخی نہ مارے جو اپنا کمر بند کھولتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس وقت وہ بادشاہوں کے ساتھ کیموں میں میں نوشی کر رہا تھا، تو اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ محاصرہ کرو، سو انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا۔
اور دیکھو، ایک نبی نے اسرائیل کے بادشاہ احیاب کے پاس آ کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو نے یہ عظیم گروہ دیکھا؟ دیکھو، میں آج اسے تیرے ہاتھ میں دے دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں خداوند ہوں۔ احیاب نے جواب دے کر کہا، کس کے ہاتھ سے؟ اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے رئیسوں کے جوانوں کے ہاتھ سے۔ اس نے کہا، کون لڑائی شروع کرے؟ اس نے کہا، تو۔ تب اس نے صوبوں کے رئیسوں کے جوانوں کا شمار کیا تو وہ 230 آدمی تھے، اور ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی تمام بنی اسرائیل کا شمار کیا جو 7,000 تھے۔
اور وہ دوپہر کے وقت باہر نکلے، اور بن حدد اور 32 بادشاہ जो उसके मददगार थे कैमों में शराब पीकर नशे में थे, और सूबों के रईसों के जवान पहले निकले, तो बिन हदद ने आदमी भेजे। उन्होंने उसे खबर दी और कहा कि सामरा से लोग निकले हैं। उसने कहा, अगर वो सुलह ख्वाह होकर निकले हैं तो उन्हें जिंदा पकड़ लो, और अगर वो लड़ाई के लिए निकले हैं तो भी उन्हें जिंदा पकड़ो। तब सूबों के रईसों के जवान शहर से बाहर निकले और लश्कर उनके पीछे था, और हर एक आदमी ने अपने सामने के आदमी को मारा, तो अरामी भागे और इसराइल ने उनका पीछा किया। तो आराम का बादशाह बिन हदद घोड़े पर सवार होकर माँ सवारों के भाग गया, और इसराइल का बादशाह बाहर निकला और घोड़ों और गाड़ियों को मारा और अरामियों को बाशिद्दत कत्ल किया। तब एक नबी ने इसराइल के बादशाह के पास आकर कहा, रवाना हो और अपने आप को मजबूत कर और सोच और देख कि तू क्या करता है, क्योंकि बरस के फिरते वक्त आराम का बादशाह फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा।
और शाह आराम के खादिमों ने उससे कहा कि इसराइल का खुदा खुदा पहाड़ी खुदा है, इसलिए वो हम पर गालिब आए, लेकिन अगर हम उनसे मैदान में लड़ें तो हम उन पर गालिब आएंगे। और तू ये बात कर कि बादशाहों को उनकी जगह से माजूल कर और उनकी बजाय रसालादारों को मुकरर कर, और तू अपने लिए उस लश्कर की मानंद एक लश्कर तैयार कर जो मारा गया है, घोड़े के बदले घोड़ा और गाड़ी के बदले गाड़ी, और हम उनके साथ मैदान में जंग करेंगे और उन पर गालिब आएंगे। तो उसने उनकी बात सुनी और ऐसा ही किया। तब साल के फिरते वक्त बिन हदद ने अरामियों का शुमार किया और इसराइल से जंग करने के लिए अफीक पर चढ़ाई कर दी, और बनी इसराइल का शुमार किया गया, उन्हें खुराक दी गई और वो उनका सामना करने को गए। और बनी इसराइल बकरियों के दो छोटे छोटे झुंडों की तरह उनके मुकाबले में खैमाजन हुए, जबकि मुल्क अरामियों से भर गया। तब एक मर्द खुदा ने आकर इसराइल के बादशाह से कलाम किया और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि अरामियों ने कहा है कि खुदावंद पहाड़ी खुदा है और वादियों का खुदा नहीं, इसलिए मैं इस सारे भारी गिरोह को तेरे हाथ में दे दूंगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद हूं। सो ये उनके मुकाबिल 7 दिन तक खैमा जन रहे। जब 7वां दिन हुआ तो आमने सामने लड़ाई लगी, और बनी इसराइल ने अरामियों में से 1 दिन में 1,00,000 प्यादे कत्ल कर दिए, और बाकी मांदा अफीक के शहर को भाग गए, और वहां 27,000 आदमियों पर जो बाकी रहे थे दीवार गिर पड़ी, और बिन हदद भागा और शहर के अंदर दरबदर छुपने के लिए भागता फिरता था। और उसके मुलाजमों ने उससे कहा, हमने सुना है कि इसराइल के घराने के बादशाह रहम दिल बादशाह हैं, सो हमें इजाजत दे कि हम अपनी कमरों पर टाट कसें और अपने सरों पर रस्से बांधें और इसराइल के बादशाह के पास जाएं, शायद कि वो तेरी जान बख्शी करे। तब उन्होंने टाट अपनी कमरों पर कसे और सरों पर रस्से बांधे और इसराइल के बादशाह के पास आए और कहा, तेरा खादिम बिन हदद कहता है, मैं तुझसे इल्तजा करता हूं कि मेरी जान बख्शी कर। तो उसने कहा, क्या वो अभी तक जिंदा है? वो तो मेरा भाई है। तो वो आदमी खुश हुए और जल्दी से उसके मुंह की बात पकड़ी और कहा, बिन हदद तेरा भाई है? तो उसने कहा, जाओ उसे ले आओ। तो बिन हदद उसके पास आया और उसने उसे अपनी गाड़ी में चढ़ाया और उसने उसे कहा कि वो शहर जो मेरे बाप ने तेरे बाप से ले लिए, मैं तुझे वापस देता हूं और तू अपने लिए दमिश्क में बाजार बनवा, जैसा कि मेरे बाप ने सामरा में किया। उसने कहा, इसी अहद पर मैं तुझे रवाना करूंगा। सो उसने उससे अहद किया और उसे जाने दिया।
और अंबिया जादों में से एक आदमी ने खुदावंद के हुक्म से अपने साथी से कहा कि मुझे मार, तो उस आदमी ने मारने से इनकार किया। तब उसने उससे कहा, क्योंकि तूने खुदावंद का हुक्म ना माना, सो जूं ही तू मेरे पास से रवाना होगा तो एक शेर तुझे मार डालेगा। सो जूं ही वो उसके पास से रवाना हुआ, उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला। फिर वो एक और आदमी को मिला और उससे कहा कि मुझे मार, तो उस आदमी ने उसे मार मारी और उसे जख्मी किया। तब वो नबी चला गया और राह में बादशाह के लिए ठहरा और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर शक्ल बदली। जब बादशाह वहां से गुजरा तो उसने बादशाह को पुकारा और कहा कि तेरा खादिम जंग होते में वहां गया था, तो देखो एक आदमी एक तरफ को गया और मेरे पास एक आदमी को ले आया और कहा कि इस आदमी की निगहबानी कर, और अगर वो तुझ से गायब हो गया तो तेरी जान उसकी जान के बदले में होगी, या तू मुझे चांदी का एक कंतार तोल कर देगा। और जिस वक्त तेरा खादिम इधर उधर मशगूल था तो वो आदमी गुम हो गया। इसराइल के बादशाह ने उससे कहा, तुझ पर यही हुक्म है जो तूने आप फैसला किया। तब उसने जल्दी से अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई, तो इसराइल के बादशाह ने उसे पहचाना कि वो नबियों में से एक है। तब नबी ने उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि तूने अपने हाथ से एक आदमी को जाने दिया जिसे मैंने वाजिबुल कत्ल ठहराया था, तो तेरी जान उसकी जान के बदले में होगी और तेरे लोग उसके लोगों के बदले में होंगे। तब इसराइल का बादशाह गमगीन और नाखुश होकर अपने घर को फिरा और सामरा में आया।